आज सुबह हम लोग श्रीमद् भागवतम से चर्चा कर रहे थे, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय से, जहां सुत गोस्वामी से नैमिषारण्य के सारे ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछा और जिसके उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवतम बोला गया। नैमिषारण्य ऋषियों का निर्णय यह था कि हमारी खुद की भलाई के लिए और संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए हम 1000 साल तक यज्ञ करेंगे। ये दृढ़ निश्चय से वो एकत्रित हुए थे नैमिषारण्य के पवित्र स्थान पे, और वहां सुत गोस्वामी को एक अधिकृत वक्ता के रूप में उन्होंने चुना, क्योंकि उनके अंदर संपूर्ण वो योग्यता थी भागवत प्रस्तुत करने की, और उनको आसन पर बैठाया और उनके सामने 6 प्रश्न रखा। आज सुबह हम दूसरा प्रश्न के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पहला प्रश्न ये था कि एक मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेहतर, सबसे कौन सा धर्म है, क्या करना है उसे, सबसे श्रेष्ठ कोई भी मनुष्य। और उसके उत्तर में सुत गोस्वामी ने बताया, सवई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति ही अधोक्ष दे भाई दुखी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। सवई पुंसाम, हरेक जीव के लिए परो धर्म, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यह है कि जिसके द्वारा, जिसके पालन करने से यह तो भक्ति अधोक्षदे, अधोक्षदे अक्षदे यानी भगवान आंखों के सामने प्रकट होने वाली, अधोक्षदे अक्षदे मतलब जो इस भौतिक संसार से परे हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेव। अहेतु की अप्रतिहता, बिना कोई हेतु के, बिना कोई अपेक्षा के और बिना कोई रुकावट के किसी हालत में वे आत्मा सुप्रसिद्ध है, तब आत्मा तृप्त हो जाता है। एक्चुअली आप अगर सोचेंगे, ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे, जो कुछ भी कर रहे हैं हम इस दुनिया में, ये अपेक्षा है कि हम संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, आनंदित हो जाए, पर अपनी मूल स्थिति को न जानते हुए, हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा की जो मुख्य जरूरी है वो न जानते हुए, अपने आप को शरीर और मन समझते हुए, शरीर को तुष्ट करने, शरीर को आनंदित देना है, मन को आनंदित देने के स्तर पर जो कुछ भी कार्य करते हैं, कर्म ज्ञान योग इत्यादि जो भी आध्यात्मिक क्यों ना हो, वो आत्मा को तुष्टि नहीं दे सकती, संपूर्ण तृप्ति नहीं दे सकती, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, भगवान के अंश है, और भगवान ने ऐसा हमें निर्माण किया है कि जीव को प्रेम चाहिए, जीव का स्वभाव है प्रेम स्वीकार करना और प्रेम देना, और वो प्रेम अनंत होना चाहिए, और अनंत और अनंत काल तक और मात्रा में भी अनंत। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति हमें अनंत प्रेम और अनंत काल तक नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, और हमारा प्रेम क्या है, हम एक केशाग्र शतभाग से शतधा कल्पित से कितना प्रेम है, एक वाटी भर पानी और कहां समुद्र। तो जीव को अनंत प्रेम चाहिए अनंत काल तक, और वो एक ही व्यक्ति दे सकता है अनंत, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो अनंत है, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, और वो भगवान है सब अनंत। यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि, सब कुछ अनंत है, उनका नाम अनंत है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, उनका रूप अनंत है, उनके गुण अनंत है, अनंत शेष अनंत काल से अनंत मुख से गुणगान करने पर अभी तक खत्म नहीं किया, तो उनका गुण अनंत है, उनकी लीला अनंत है, उनका धाम अनंत है, सब कुछ उनके साथ अनंत है, तो उनका प्रेम भी अनंत है। तो वो प्रेम जब जीव को मिलता है तब वो सुप्रसिद्धति पूर्ण सतृप्त हो जाता है, पर भगवान को न जानते हुए, भगवान के साथ अपना रिश्ता न जानते हुए, अज्ञानवश जब इस भौतिक संसार में वो अनंत प्रेम, अमर प्रेम, अमर प्रेम चाहिए उसको। बड़े बड़े कवि लिखते हैं, बड़े बड़े सिनेमा लोग सिनेमा भी बनाते हैं अमर प्रेम, कौन सा प्रेम कौन सा अमर रहा, इस दुनिया का प्रेम कैसा है, रोमियो जूलियट का प्रेम, हीर रांझा का प्रेम, और कौन, लैला मजनू का प्रेम। हाँ देखिए हर एक संस्कृति में एक एक जोड़ी तो मिल जाएगा, पाश्चात्य देश में जाओ तो रोमियो जूलियट, थोड़ा उत्तर भारत में जाओ तो हीर रांझा, और थोड़ा उधर जाओ तो लैला मजनू, और उसको इतना गुणगान किया जाता है। तो मृत्यु के बाद जैसा स्मरण करोगे वैसा जाओगे, अगर मजनू लैला के बारे में सोचता रहेगा अगले जन्म में लैला बन जाएगा, किसी और मजनू के पीछे जाएगा जाएगी। इस तरह से ये अमर और अनंत प्रेम एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो है कृष्ण। तो ये उन्होंने स्थापित कर दिया। अब दूसरा प्रश्न उनका ये था, जैसे आज सुबह हमने चर्चा किया उसको संक्षिप्त रूप में कहेंगे, नहीं तो वही एक लेक्चर हो जाएगा एक घंटे का। वो ये था उनका प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम सबको सोचने वाली चीज है, क्योंकि हम सब कलयुग के जीव हैं, जो भी कलयुग के जीव है उनके लिए लागू है, जो यहां कलयुग का जीव नहीं है वो उठ के जा सकता है, उनके लिए लागू नहीं है, अभी हम चर्चा कर रहे हैं। कलयुग का जीव का वर्णन किया, प्रायण अल्पायुष, आयु उनकी कम है, कलौ अस्मिन् युगे जना, बहुत सारे झगड़े होते हैं और पूरा हमारा चेतना झगड़े में चला जाता है, मंदा आलसी, भौतिक रूप से थोड़े फायदा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आध्यात्मिक रूप में आलसी, समय है ना इच्छा है। तो प्रायण अल्पायुष कलौ, हमेशा झगड़ा, मंदा आलसी सुमंद मतयो हो, और अगर चाहता भी है तो बहुत सारे तथाकथित संस्थाएं हैं जो पथ भ्रष्ट करने के लिए, मार्ग दूसरे का गलत तरीके से दिखाने के लिए तैयार है। सुमंद मतयो, मंद भाग्य ही, और बहुत ही दुर्भाग्य, क्यों, क्योंकि थोड़ा जो समय मिलता है काम काम करके, पापी पेट का सवाल है, पेट को संभालने के लिए जो थोड़ा टाइम मिलता है, उस थोड़े टाइम में भी ऐसे सारे चीज, बहुत सारी चीजें है जो हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट क्या होते हैं, विचलित कर देती है, इधर उधर भगा के ले आती है, टीवी है, वीडियो है, और क्या क्या नहीं है, बहुत सारी चीज है आजकल की दुनिया, तो उसमें ही समय चला जाता है, पूरा समय हमारा चला जाता है, मंद भाग्य भी और उपद्रवता, और इन सब को चीजों में फंसे रहने के कारण उपद्रवता, हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा चिंतित रहता है आदमी। तो ये जानकर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, भूरिणी भूरि करवाणी, उन्होंने कहा कि हे सुत गोस्वामी, वैदिक वाङ्मय में अनेक अनेक शास्त्र हैं, पुराण हैं और उपनिषद है और महाभारत है, रामायण है, क्या क्या है, बहुत सारे अनेक वैदिक वाङ्मय है और उन वैदिक ग्रंथों में अनेक प्रकार के विधि विधान बताए गए हैं, जब तप व्रत इत्यादि बहुत सारी चीज बताए गए हैं, अनेक अनेक विधि विधान बताए गए हैं, और एक एक विधि विधान को सीखना और उसको अच्छी तरह से समझकर उतारना बहुत समय लग जाता है। तो एक अनेक शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में अनेक अलग अलग तरीके के पथ बताए गए हैं, अर्थ बताए गए हैं, और एक एक मार्ग को भी समझना, सुनना, समझना और उतारना अनेक अनेक साल लग जाएंगे। पर कलयुग के लोगों की स्थिति क्या है, अल्पायुषः कलौ मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुतः। तो इसीलिए आप हमें एक शॉर्टकट बताइए, सारे शास्त्रों का सार बताइए। तो रूप शुद्ध गोस्वामी ने सार बताया, तस्मादेके मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। तस्मात एकेन मनसा, क्योंकि भगवत प्रेम भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, तस्मात इसीलिए हे ऋषियों एकेन मनसा मन को एकाग्र करके भगवान सात्वताम पति ही, ऐसे भगवान जो भक्तों के खास रक्षक हैं, श्रोतव्य उनके बारे में सुनो, कीर्तितव्यश्च उनका कीर्तन करो, ध्येय उनका ध्यान करो, पूज्यश्च उनकी उनको पूजो, उनकी शरण जाओ, नित्यदा निरंतर। रूपमान समझाते हैं उसके तात्पर्य में, किसी के बारे में सुनना, किसी के बारे में गुणगान करना, किसी का ध्यान करना और किसी को पूजा करना, ये पूरे स्वाभाविक है हर एक जीव के लिए। दुर्भाग्यवश आज के इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे तथाकथित हीरो हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, सब जगह देखते हैं, पोस्टर्स में देखते हैं, तो जिनके बारे में बार बार सुनेंगे, चाहे वो क्रिकेट हीरो हो, चाहे वो फिल्म हीरो हो, चाहे वो पॉलिटिकल फिगर हो, श्रोतव्य कीर्तितव्य उनका कीर्तिगान होता है न्यूज़पेपर में, टीवी में इत्यादि में, तो ध्येय उन्हीं का ध्यान रहता है, और स्वाभाविक से ध्यान करते करते हम भी उनके समान बनना चाहते हैं और उनके चित्र को रखकर हम उनकी पूजा करते हैं, जैसे नित्य रहा निरंतर। पर ऐसे लोगों के पूजा करने से, सुनने से, गुणगान करने से, स्मरण करने से न उनको फायदा है न हमको फायदा है। अंतकाले च अगर उनका स्मरण किया तो क्या वो बचाने वाला है आपको, तब तक वो ही नहीं रहेगा सबसे पहले, न वो पदवी पे रहेगा, शायद वो धरातल में भी नहीं रहेगा तब तक, तो न वो बचा सकता है न आप उससे फायदा उठा सकते, न उसको फायदा है न तुमको फायदा है। पर भगवान सात्वताम पति खास करके भगवान की स्मरण करेंगे, जो सात्वताम पति भक्तों के खास रक्षक हैं, कौन्तेय प्रतिदानी हमें भक्त प्रणश्यति, तो उनका स्मरण करो, बस यही सार। स्मर्तव्य सर्वदम विष्णु विस्मर्तव्यो न जानुचित सर्वे विधिषेधयोरेव किंकर। शास्त्र कहता है विधि, शास्त्र मतलब दो विधि निषेध, ये करो, ये मत करो, बस शास्त्र का मतलब ही दो ही प्रकार के वाक्य हैं, उसमें विधि बताए गए हैं और निषेध बताया गया है। सारे विधियों का उद्देश्य है स्मर्तव्य सर्वदम विष्णु, हमेशा भगवान का स्मरण करो, और सारे निषेध का मतलब है जो भी भगवान को भुला दे वो चीजों को मत करो, अनुकूल से संकल्पो विधि को स्वीकार करो, प्रतिकूल से वर्जनम प्रतिकूल चीजों को जो भगवान को भुला देता है उसे छोड़ दो बस। क्यों लोग चार नियमों का पालन करते हैं, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, क्योंकि ये चीज हम शरीर हैं इसको और बढ़ाता है इस भावना को। पर क्यों हम लोग बोलते हरिनाम का जप करो, हरिनाम का जप मतलब हम शरीर नहीं आत्मा हैं, भगवान के दास हैं, इसको बढ़ाता है। इसीलिए तो फिर कहते हैं भगवान का अगर स्मरण करे तो क्या होता है, भगवान का अगर ध्यान करे क्या होता है। अगले श्लोक में कहते हैं खुद गोस्वामी क्यों कहते हैं, अरे क्योंकि प्रश्न ये था कि सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है, सबसे सरल चीज क्या है, सार बताइए। सार यानी भगवान का स्मरण करना, बस। एक्चुअली सारे शास्त्रों का निचोड़ ये है, हमेशा भगवान का स्मरण करो, और सारे निषेधों का सार है कभी भगवान को मत भूलो। क्यों, भगवान को स्मरण करने से क्या होता है, यद अनुध्य असिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदस्तस्य कोनपुर्यात् कथारतिम। यद अनुध्य असिना, भगवान यद यानी भगवान की, अनुध्य यानी ध्यान करना, भगवान को जब अपने हृदय में अपने मन में ध्यान करते हो तो आपके हाथ में एक तलवार आ जाता है। बोलेगी नहीं आज तक तो कभी तलवार नहीं देखा मेरे हाथ में। नहीं, एक दिव्य तलवार आ जाता है आपके हृदय आपके हाथ में। यद अनुध्य असीना, असीना मतलब ऐसा तलवार जिसका धार एकदम चमकता हुआ, तलवार जिसका धार बहुत ही क्या होते तीक्ष्ण तलवार जो चमक रहा है और बहुत ही धार है। यद अनुध्य असीना युक्ता, आपके हाथ में वो तलवार देंगे भगवान। तलवार देखिए क्या करना है, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंती। कर्म ग्रंथि, हमारे हृदय में हम क्यों इस भौतिक संसार में हैं, क्योंकि माया ने हमको बांध के रखा है, जैसे कैदियों को बांध देते हैं, चेन डाल देते हैं कि भागे नहीं। आजकल के जमाने में जेल में डालते हैं, पहले जमाने में जेल नहीं था, तो एक लोहे का गोला लेते थे इतना बड़ा 50 या 100 किलो वाला, और उसमें चेन लगा के तुम्हारे पैर में लगा दो, कहां भागेगा वो 100-100 किलो लेके। बस जैसे कभी कभी गाय को बांध देते, खूंटी पे बांध देते, बैल को बांध देते, हाथी को बांध देते, ऐसे माया इतनी चालाक है वो भी बांध दिए, अंदर से बांध के रखी हो, दिखता नहीं है वो गांठ, अंदर से बांध के रखा हो, इसीलिए भागने का कोशिश नहीं करता आदमी, कोशिश नहीं। कोई बोले आ जाओ, बोले नहीं टाइम नहीं मेरे पास, बोल यही घोष या मेरे को घास मिलता है या मेरे को पानी मिलता है टाइम टू टाइम, इच्छा ही नहीं है उसको जाने की। तो जब जीव भगवान के धाम को छोड़कर इस संसार में आता है तब माया देवी उसको पकड़ती है आत्मा को और उसको बांधती है। कैसे बांधती है, एक शरीर दे देती है, एक शरीर दे देती है, शरीर से बाहर को आत्मा भागता नहीं है, और ये शरीर इतना अच्छा लगता है लोगों को, इसको छोड़ के कैसे जाना, इधर ही रहता हूं, ये माया है। शरीर जो है एक्चुअली जड़ है, शरीर हमेशा मरा हुआ है, और आत्मा हम नित्य अजय हो नित्यो शाश्वत हो यम पुराणो नहन्य के हन्य माने शरीर, शरीर हमेशा मरा हुआ है। आपको मालूम है हमेशा मरा हुआ रहता है, अभी जिंदा है क्योंकि आत्मा है अंदर, आत्मा अगर निकल जाए तो काटो खोड़ो कुछ नहीं होता, पर जब तक आत्मा है तब तक थोड़ा तकलीफ, तब तक शरीर को है तकलीफ। तो शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें, शरीर को काटा जा सकता है, शरीर को जलाया जा सकता है, शरीर को भिगाया जा सकता है, पर आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयम् व्यापो न शोषयति मारुतः, इसको जला नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये आत्मा अपरेयम तस्पन्याम प्रकृति बुद्धि में परा, ये अपरा प्रकृति है, अरे परा प्रकृति है, और ये शरीर जड़ प्रकृति है, इसको बांधा कैसे, बांधा है एक धागे से, और धागे का नाम है अहंकार। आत्मा को बांधा अहंकार से, अहंकार का चेन लेके बुद्धि को बांधा, बुद्धि का लेके मन को बांध दिया, और मन का चेन लेके शरीर को बांध दिया। और आत्मा जहां जाता है सब आता है, जैसा इंजन जाता है तो पूरा डब्बे साथ में आते हैं ऐसा कनेक्शन उधर है इंजन के साथ, इंजन नहीं तो सब डब्बा व्यर्थ है उधर। इसी तरह आत्मा जो असली इंजन है उसको बांध दिया पहले डब्बा से, अहंकार, अहंकार जो है चेन है इतना अहंकार। अहंकार मूढ़ आत्मा करता हन की मन के प्रकृति क्रियमाण नहीं करवा सकता, ये अहंकार उसको बांध के रखा है। और इस अहंकार को काटना नामुमकिन है, और इसी के कारण हम इस संसार में हैं। सुबह हम उदाहरण दे रहे थे, कल हमने चर्चा किया ये भौतिक संसार की आसक्ति से। कल आपने देखा होगा हमने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया गांठ बांधने का रस्सी में गांठ बांधने का, जितने लोग आए थे कल। गांठ बांधना बड़ा आसान है, निकालने में बहुत मुश्किल है। इसी तरह से बांधना बड़ा आसान है, निकालना बड़ा मुश्किल, और उसके कारण वो कपाल में घुसा ही नहीं, एक छोटे से उनसे निकालने की कोशिश नहीं निकला। तो 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम्। शस्त्र है जो है ये अनुध्यासिना, भगवान का स्मरण जो है वो एक तलवार के समान है जिसके द्वारा इस कर्म ग्रंथि, भौतिक कर्म के बंधन में फंस गए उस ग्रंथि को निबंधनम छिन्दंती, जो जो इस बंधन का कारण है छिन्दंती कौन, कोविद, कोविद मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। कम बुद्धि वाले लोग इस तलवार की महिमा नहीं जानते, इसीलिए इसको अपना फिर तो बुद्धिमान कोविद छिन्दंती कोविद तस्य कौन कुरिया कथा रति। सवाल, अगला सवाल उठता है, कोई पूछ सकता है प्रभु जी 24 घंटे सततम कीर्तयन्तो मां, कैसा हो सकता है, बहुत मुश्किल है। जब जब करने बैठते हो उस समय भी स्मरण नहीं होता भगवान का, तो भी आप बोल रहे हो सततम मन मना, मुश्किल लगता है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि प्रेम नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रेम है उसको क्या स्मरण करना तकलीफ है, तो जब उसको बोलना पड़ता है प्रभु जी जिसको आप प्रेम करते थोड़ा स्मरण करो उसके बारे में, अभी चलो एक घंटे के, चलो डेढ़ घंटे के स्मरण। अरे 24 घंटे स्मरण करेगा वो। सुबह हम चर्चा कर रहे थे, कभी कभी कॉलेज के लड़के बस में जाते हैं, हमेशा किसी के साथ अगर प्रेम हो गया हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते, कॉलेज में भी बैठ के उसी के बारे में सोचते रहते, बस में जाते भी उसी के बारे में सोचते रहते। और इसीलिए क्या करते हैं, बस के पीछे में एक हृदय बनाते और फिर एक तीर लेते, मतलब कहने का मतलब है ये मेरा हृदय है और तुम्हारा स्मरण ऐसा तलवार तीर जैसा है जो घुस गया है। पर वो तलवार घुसने से क्या होता है, उन्होंने नीचे दिखाते तीन बूंद दिखाते ऐसा खून से लथपथ हो गया तो वो लोग भी वही बोलते हैं अनुध्यासिना युक्त, वो स्मरण भी एक तीर के समान है जो हमारे हृदय को आर पार कर देता है। पर तकलीफ ये है वो कर्म बंधन गांठ को और टाइट से बांधता है। जनस्य मोहोयम अहमोनीति, ये मैं शरीर हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे वो है वो है, मेरा देश मेरा गांव, तो इस तरह से जनस्य मोहोयम अहमोनीति। पर भगवान का स्मरण जो है छिन्दंती कर्म ग्रंथि निबंधन। तो जब प्रेम है तो स्मरण करना आसान है, जब प्रेम नहीं है तो प्रेम स्मरण करना तपस्या है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति मतलब प्रेम नहीं है, इसीलिए जबरदस्ती करना पड़ता है कम से कम डेढ़ घंटा दिन में, और जब प्रेम हो जाएगा तब स्मरण तकलीफ नहीं होगा, भूलना तकलीफ हो जाएगा। आधा घंटा अगर भूल गए, ये भाव भक्ति का लक्षण है, अव्यर्थ काल तो एक क्षण के लिए भी एक शुद्ध भक्त भगवान को भूल जाता है तो अपने आप को कोसता है, छिप एक क्षण जो है भगवान के विस्मृति में चला गया। तो अगर भगवान का हमेशा स्मरण करना है तो तरीका है भगवान से प्रेम करो। अगला सवाल होता है महाराज प्रेम कैसा करें, बहुत मुश्किल है। अगले श्लोक में बताते हैं, देखिए ये भागवत श्लोक ना ऐसे ही फालतू टाइम पास जो अच्छा लगा एक श्लोक ऐसे बोल दिया ऐसा नहीं है। एक के बाद एक श्लोक क्यों आया है, क्योंकि उसका कनेक्शन है। तो पहले बोले स्मरण करो, क्यों स्मरण करो, क्योंकि वो तलवार है जो कर्म ग्रंथि को काटता है। तो स्मरण करना है तो प्रेम होना चाहिए, प्रेम कहां से मिले अगले श्लोक में उसका वर्णन है। अगले श्लोक में क्या कहता है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। वासुदेव कथा रुचि, रुचि होनी चाहिए ना, जब रुचि होगी तो स्मरण होगा, रुचि नहीं है तो विस्मरण हो जाएगा। तो वासुदेव कथा रुचि कहां से आए, शुश्रूषो श्रद्धदानस्य पहला लक्षण, स्यान् महत् सेवया पुण्यतीर्थं सेवनात्। दो चीज करने से